Om Shanti. Good evening. Good evening. Thank you. किस किस को नींद आ रही है? आ रही है किसी को नींद? हाथ खड़ा करेंगे? आपको नींद आ रही है? ओहो हो, जिस किसी को मैं नींद आ रही हूँ ना, थोड़ा पानी पी के आ जाए। सबसे बड़ी समस्या तो यही है राजयोगी के लिए। मन बनता है और आज बहुत अच्छा सा हम योग में बैठे और हम सारा कार्य समेट के, समय निकाल के, मन बना के बैठते हैं, पर जब ही सारा काम समेट गया, मन बना लिया, तो सबसे बड़ी परीक्षा तो नींद है ना? पता ही नहीं चलता है हम परम धाम गए कि सूक्ष्म लोक गए कि पिछले जन्म में गए, गुम। एनीवे, हम सभी बाबा के बच्चे बहुत ही भाग्यवान हैं। बहुत माना इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हम सभी भली भांति जानते हैं संसार की क्या हालत है। हमारे साथ ही भगवान हैं, हमारे सामने भी हैं, हमारे साथ में भी हैं। अगर ऐसी परिस्थितियां आए तो हमें अपने गोद में भी उठा ले, चलने भी ना दे। वो नहीं कहानी आप सभी ने सुना होगा, एक व्यक्ति था जो भगवान में बहुत विश्वास करता था और उसको भगवान के सिवाय कोई फ्रेंड ही नहीं थे। वो जब कभी भी समस्या उसके उसको परेशान समस्या से परेशान होता था, सी बीच पे चला जाता था, समुद्र किनारे जाकर के वो चलते चलते बातें करता था भगवान से। फिर वो देखता था जब वो चलता था उसके साथ साथ और दो पग के निशानी उसको दिखता था, तो उसको लगता था भाई भगवान सुन रहा है, मेरे साथ साथ चल रहा है। एक दिन वो बहुत परेशान था, इतना परेशान कि वो माना मरने जीने की बात आ गई। फिर वो उसको समझ में ही नहीं आया क्या करे, तो भागा वो किनारे, समुद्र किनारे। चलते चलते वो बड़बड़ा रहा था, बात कर रहा था। फिर उसने देखा वो पास में वो जो दो पैर की निशानी होनी चाहिए, हमेशा पैर की निशानी होती थी, वो आज है ही नहीं। उसको आया बड़ा गुस्सा। उसको लगा कि मैं सीधा भगवान के पास जाकर के मैं पूछूंगा ये क्या बात हो गई, आपके सिवाय मेरा है कौन, जब आज इतनी बड़ी मुसीबत आ गई, आप तो मेरे साथ हो ही नहीं, कहाँ है निशानी, आपके पैर के निशानी है ही नहीं, मेरे अकेले के पैर की निशानी है। फिर उसको इतना आया, वो जाकर के रो रो के सो गया। फिर उसको सपना आया, तो सपने में भी वो लड़ने लगा भगवान से, ऐसे कैसे किया आपने। तो भगवान की आवाज बहुत सुंदर उसको आवाज आई और उसने कहा आप ऐसे कैसे समझ सकते हो, ऐसे कैसे सोच सकते हो, जब आप मुसीबत में हो और हम आपके साथ ना हो। फिर इसने कहा पैर की निशानी तो थी नहीं, कहते जब आप परेशान थे मैं आपको गोद में उठा लिया था। वो जो पैर की निशानी आप देख रहे हैं वो मेरे हैं, आपके पैर के तो निशानी नहीं थे क्योंकि आप तो मेरे गोद में थे। तो जब कभी भी आप मुसीबत में होंगे हम आपको चलने भी नहीं देंगे। खुश नहीं हुए? वो चश्मा नहीं पहन के है ना, इसलिए पता नहीं आप सो रहे कि जाग रहे, दिखाई। चलिए, इट मीन्स कई बार मैं सोचती हूँ यहाँ पर भी चाहे हम बाबा के बने, हम बाबा के ना बने, समस्या तो आनी है, ये पक्की बात है। पक्की बात है, ठीक है। कम से कम हमें ये तसल्ली है, बाबा हमारा सहारा है, जो सर्वशक्तिवान है, सारे सृष्टि के रचयिता है, क्या नहीं कर सकता, वो हमारे रक्षक है, वो हमारा साथी है, वो हमारे आधार है, सपोर्ट है हमारे लिए। पर दुनिया वाले किस भरोसे जी रहे हैं, बेचारे सोचते हैं, समझ ही नहीं आते कैसे, किस विश्वास पर, किस भरोसे पर जी रहे हैं, उनको तो भगवान का तो पता ही नहीं है। इसलिए हमारे भी छोटे मोटी बातें हैं, पर हमारे साथ कौन है। बेशक हम कमजोर हैं, पर जिनके हाथ में मेरा हाथ दिया है वो तो कमजोर नहीं ना। मैं कमजोर हूं, पर जिसने मेरा हाथ पकड़ा है वो कौन, वो कौन, बलवान है। मैं कभी कभार भूल सकती हूं, पर वो मुझे नहीं छोड़ सकता। इसीलिए भय नहीं होना चाहिए। अच्छा, हमारे ब्राह्मण जीवन में क्या क्या परिस्थिति आती है, परिस्थितियां क्या आती है, अच्छा किस किस को परिस्थिति आती है। हाँ, हम सबको आती है, ठीक है। तो परिस्थिति आती है तो क्या हुआ, इसमें बात क्या है, आपके किन किन के बच्चे हैं, किन किन के घर में। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आपके बच्चे कौन कौन स्कूल में जाते हैं, पढ़ाई करने वाले बच्चे कौन कौन है, हाथ खड़ा करें। वेरी गुड। मान लीजिए आपका बच्चा बीमार पड़ा, उसको बुखार आया, व्हाटएवर जो भी है, एग्जाम के टाइम में उसको बुखार आ गया, उसकी तबीयत खराब हो गई, तो जो माँ बाप अपने बच्चों के उन्नति के लिए चिंतित हैं, प्रोग्रेस के लिए चिंतित है, वो माँ बाप स्कूल जाकर प्रिंसिपल से मिलकर उनको ये बोलते, मेरे बच्चे के लिए दोबारा परीक्षा रखो। कोई माँ बाप ये नहीं बोलेंगे, अच्छा हुआ टल गई परीक्षा, मेरे बच्चा बीमार पड़ा परीक्षा से टल गया। कौन कौन खुश होंगे, कौन कौन खुश होंगे। अगर बच्चा परीक्षा फेस नहीं करता है तो चिंता किस किस को होती है, होती है। जब साधारण माता पिता वो बच्चा घबराएगा तो भी प्रिंसिपल से बात करके दोबारा एग्जामिनेशन रखाते हैं, दोबारा टेस्ट रखाते हैं, तो ये भी तो माता पिता है ना। हम जितने बार घबरा करके भागने की कोशिश करें वो दोबारा रखेगा, चार बार रखेगा। आप चाहेंगे चार बार एग्जाम फेस करो, तो इससे अच्छे एक बार में खत्म करो भाई, है या ना। हाँ, कोई भी परिस्थिति आती है, हमको बाबा ने इतना ज्ञान दिया है, एवरी सिचुएशन, हर परिस्थिति ईश्वरीय विद्यार्थी के लिए मात्र एक प्रश्न है बस। वो प्रश्न का उत्तर दे देंगे, बात खत्म। अगर वो प्रश्न, वो परिस्थिति में हम घबरा क्यों जाते हैं, क्योंकि उस प्रश्न का उत्तर हमारे पास है नहीं। और वो उत्तर है, ये कोई किताब में लिख करके पेपर में लिखने वाले तो प्रश्नोत्तर है नहीं, ये उत्तर वो है। ये उत्तर कौन से, ईश्वरीय जीवन में, ब्राह्मण जीवन में जो परीक्षाएं आती है, उस परीक्षा रूपी पेपर का आंसर क्या है, क्वेश्चन है। हर परिस्थिति क्वेश्चन है, हर परिस्थिति प्रश्न है, चाहे वो परिस्थिति लौकिक के रूप में आए, अलौकिक के रूप में आए, लोगों के रूप में आए, धन के रूप में आए, संस्कारों के, जो भी बातें आए हों तो केवल मुझ आत्मा के लिए, मैं ईश्वर का बच्चा हूं, ईश्वर मेरा पिता भी है तो टीचर भी है, तो उस परमात्मा टीचर के हम स्टूडेंट्स हैं, तो ये मेरे लिए केवल एक प्रश्न है। उस प्रश्न का उत्तर है, ज्ञान बहुत भरा पड़ा है और परिस्थिति आई, हम घबरा गए, माना उत्तर हमने ठीक नहीं दिया। तो हमारे जीवन के जो भी परिस्थिति का प्रश्न का उत्तर है हमारी स्थिति, वही आंसर है। और हमारी स्थिति हमारा धर्म है, हमारा सबसे प्रथम पहला धर्म कौन सा? फर्स्ट टाइम आप बाबा के घर आए, दीदियों ने हमें क्या समझाया? आप शरीर नहीं है, आत्मा है। कैसी आत्मा है? शांत स्वरूप आत्मा है। कैसी आत्मा है? शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, सुख स्वरूप है। ये आत्मा का धर्म है, ये केवल स्थिति नहीं है, ये स्थिति हर ब्राह्मण का धर्म है। कोई भी परिस्थिति हमारे जीवन में इसलिए आती है क्योंकि हम धर्म छोड़ते हैं, अपना धर्म भूला, पराया धर्म में गए तो आत्मा दुखी तो होंगे ना, हाँ जी। घर में कितने भी झगड़े हों, भाई बहनों में, जो भी है घर परिवार में, कोई धर्म तो चेंज नहीं कर लेगा ना। ऐसी हमारी परिस्थिति कुछ भी हो, हमें अपना धर्म तो नहीं छोड़ना ना। किस किस को अभी तो आम का सीजन है ना, किस किस को आम पसंद है? वेरी गुड। किस किस को गन्ना पसंद है? ओहो, अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये गन्ना हो, कोई भी फ्रूट हो, कोई भी मीठा फ्रूट हो, अभी आम को छीला जाए, चाकू से उसको काटो, अपना मिठास छोड़ेगा? और गन्ने को अपना छीलो, वो मशीन में डालो, हाँ जी, उसको क्रश करो, अपना मिठास छोड़ेगा? काटो, कूटो, मिक्सी में डालो, जो मर्जी डालो, उसको उबालो, आग में डालो, जो मर्जी कर दे, पर कोई भी प्रकृति की चीजें अपना धर्म नहीं छोड़ता, मिठास नहीं छोड़ते। गन्ना ऐसे ही खा लो तो भी मीठा, उसको मिक्सी में डाल के, क्रशर में डाल के निकालो तो भी मीठा, हाँ जी। और भी कई तरीके होंगे उसको, फिर उसका रस निकाल करके, फिर उसको उबाल उबाल के पता नहीं क्या क्या, तो भी गुड़ बन के मीठा ही होता है, अपना धर्म नहीं छोड़ता। जब प्रकृति किसी भी परिस्थिति से उसको ले जाएंगे, किसी भी परिस्थिति में उसको डाल दिया जाएगा, कदापि अपना धर्म नहीं छोड़ता, तो हम प्रकृति पति, प्रकृति अपना धर्म नहीं छोड़ती, प्रकृति पति में आत्मा, छोटी सी बात आने पर हम अपना धर्म क्यों छोड़ते हैं? यही प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें कोई छीले, हमें कोई भूने, हमें कोई काटे, तो भी हम अपना धर्म क्या है? आत्मा का धर्म क्या है? आत्मा का धर्म क्या है? बस बात खत्म, तुम करो अपना, हम रहेंगे शांति में। है इतना हिम्मत? हिम्मत की बात है ना, हिम्मत की बात है। वो कौन थे जो जिनको मुसलमानों ने, मुगलों ने, वो संत थे पंजाब के, उन्होंने बोला आप बोल दो अल्लाह अकबर बोल दो, नहीं तो आपको सजा देंगे, आपको वो करेंगे, ये करेंगे, आप अल्लाह अकबर बोल देंगे, आपको तख्त देंगे, बहुत सारा वो किया। फिर भी उसने कहा हम नहीं बोलेंगे, हमारे मुख से नहीं निकलेगा। फिर उसको इसका खाल छिला गया, तो भी इसने अल्लाह अकबर नहीं बोला, माना अपना धर्म नहीं छोड़ा। उसको रेत में बुना गया पर अपना धर्म नहीं छोड़ा। ऐसे भी महान संत हुए हैं भारत देश में। हम तो भारत पर राज्य करने वाले देवी देवते तो संत महात्मा अभी अभी के हैं। हम तो सारे प्रकृति पर जीत पाने वाले, सारे विश्व पर राज्य करने वाले, छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी परिस्थितियों में अपने मन को शांत नहीं रख सकते? ये सही नहीं है। ज्ञान बड़ा बड़ा बोलने से फायदा नहीं है, पर एक मिनट की शांति मन को एकदम अनडिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ माइंड, पीस। बातें हों, परिस्थितियां हों, पर मेरे अंदरूनी जो मन है उसको कदापि किसी भी हालत में हमें दुख नहीं देना। मैं कई बार सोचती हूँ सारी दुनिया तो हमें दुख देते हैं, हमारे मन को कष्ट देते हैं। हाँ जी, आप कुछ बोल दिया, इन्होंने कुछ कह दिया, इन्होंने कुछ कर दिया, सारे मेरे मन को दुख दे रहे हैं, और मैं भी अपने मन को दुख दूं, बेचारा इस मन को सुख कौन देगा? हम अपने मन पर जुल्म तो नहीं करना चाहिए ना? हाँ जी, मैं आपको सच बात बताऊं, ये स्टेटिस्टिक्स है। बाहर से परिस्थितियां कितनी आती हैं वो काउंटेबल है, मतलब गिना जा सकता है। हम स्वयं स्वयं के लिए प्रॉब्लम खड़ी करते हैं, हम ही आपस में एक दूसरे के लिए समस्या बनते हैं। हाँ या ना? हाँ या ना? ये खुद की बनी हुई जो समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स है, वो अधिक है। हम आपकी बात नहीं मानते, आप हमारी बात नहीं मानते, आपको हमारी बात अच्छी नहीं लगती, हमें आपकी बात नहीं अच्छी लगती। हम अपेक्षा रखते हैं आप मेरे अनुसार चलो, मैं भी अपेक्षा रखती हूँ, नहीं पहले आप मेरे अनुसार चलो। हो गई बात, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है पर शांति नहीं है, ये क्या जीवन है फिर तो? अरे छोड़ो, आप नहीं चलते, नहीं चलो, हम तो रहे। इसलिए भगवान के बच्चे होकर, ज्ञानी होकर, सर्वशक्तिवान के बच्चे होकर ऐसा दिन हमें देखना ना पड़े जब हम ऊपर जाए और भगवान से आंख मिला ना सके। धर्मराज कहते हैं ना शिव बाबा को, दीदी ने बहुत अच्छी बात कही, कुछ दिन पूर्व की बात है। इसलिए परिस्थिति क्या भी हो, हमें अपने मन को सुरक्षित रखना अति आवश्यक है। कोई भी परिस्थिति व्यक्ति के स्थिति से बनती है। जैसी स्थिति होती है वैसा उनका व्यवहार, कर्म, बोल। और स्थिति क्या है कि कोई भी सत्गुण आत्मा के, धर्म के जितने भी गुण हैं, सद्गुण जिसको कहते हैं, दिव्य गुण जिसको कहते हैं, उसके फीसूस करना, उस सद्गुण को, उस शक्ति को तपस्या। मैं आत्मा हूं, शिव बाबा का बच्चा हूं, मैं आत्मा हूं, परम धाम निवासी हूं, मैं आत्मा हूं, ये मन में सोचना नहीं है। अच्छा, आप में से कितने हैं, प्रश्न पूछ सकती हो ना? हाँ हाँ, बाद में आप भी पूछ सकते हो। आप में से कितने हैं जो कभी भी हमें दुख अशांति, मन बहुत अपसेट, विचलित होता है तो हम बाबा के पास जा करके सारी बातें बोलते हैं। वेरी गुड। जब कभी भी हमें कोई चीज की जरूरत होती है, जब कभी भी हमको लगता है कि ये चाहिए, तो बाबा से कौन मांगता है? बाबा से और कौन है हमारा, तो है ना, कौन मांगता है? नहीं, ऐसे ऐसे क्यों उठा रहे हो? उठाओ। हाँ, कोई कोई नहीं, हमारे सारे प्रश्न सही है, सारे उत्तर सही है, क्योंकि ज्ञान गोल है। इधर से भी बोलो तो भी सही है, इधर से भी बोलो तो भी सही है, कोई उत्तर गलत नहीं हो सकता, इसलिए चिंता ना करें। कौन है? जब भी मन बहुत दुखी हो जाता है, बाबा के सामने जाकर के बैठ के रोते हैं। ओ वेरी गुड। बाबा के कमरे में जाके कौन रोता है? हाँ, बाबा के कमरे कौन रहता है? ओहो, माताएं आए, जिन जिन को रोना है वहां रोने वाला बाबा को रख देंगे आपके साथ। रोते हैं? आप रोते भैया? अच्छा, बहुत अच्छी बात है, रोना चाहिए। क्या? कौन कौन है आते हैं? ओके, भाई लोग बाबा रहते फिर? हाँ, सारी बातें जो है के संस्कार है। मुझे ये बड़ी दीदी ने बताई, दीदी मनमोहिनी। हम छोटे थे जब बाबा मम्मा को तो हमने नहीं देखा, हम तो 70s में ज्ञान में आए। बड़ी दीदी ने मुझे ये बताया। देखो, इट्स अ ये बहुत ही सूक्ष्म लाइन है ज्ञान और भक्ति के संबंध में। बताइए बताइए, क्या संबंध है बाबा के साथ हमारा? बाबा है, माँ है और हैं, सतगुरु हैं, रक्षक है, प्रियतम है, सब दोस्त है कि नहीं? अच्छा, भक्ति में आप में से कौन कौन मंदिर में हाथ जोड़ करके कहा होगा भाई? कोई नहीं, तुम ही कुछ हो। कौन कौन बोला? तब भी बोला, अब भी बोला। मानते थे भगवान बाप पिता है हमारे, अब भी हम मानते थे। भक्ति मार्ग में भी हम भगवान के सामने रोया करते थे, हाँ या ना? है क्या फर्क? फर्क क्या? स्पिरिचुअल रिलेशनशिप, रिलीजियस रिलेशनशिप दो अलग चीज है। भगवान के साथ आत्मा का संबंध अर्थात आध्यात्मिक संबंध अलग है, भक्ति वाला संबंध, धर्म का संबंध जिसको कहे, वो अलग है। पर वो संस्कार हमारे इतने जन्मों के हैं, अब हमें बहुत ज्यादा फर्क महसूस नहीं होता। इसलिए बाबा कई बार मुरली में कहते हैं, मेरे बच्चों में भी थोड़े हैं, मैं जो हूं, मैं जैसा हूं, मैं कितना ऊंच हूं वो जाने पहचाने। अरे, एक साधारण माँ अपने बच्चों के, छोटे बच्चे, बच्चा आपसे मांगने आता है, मुझे दूध पिलाओ, मुझे ठंड लगती है, कि माँ ख्याल रखती है कि बच्चा मांगने जाता है? हाँ हाँ। तो एक साधारण इंसान, कलयुग के माँ बाप अपने बच्चों के ख्याल रखते हैं, तो परमात्मा सारे विश्व को, विश्व के बच्चों को वो पालना देने वाले पालनहार हैं, उनको नहीं पता? बाबा को हमने चुना या बाबा ने हमें चुना? हाँ, जब हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों में से बाबा ने हमें चुना, पहचाना, ये मेरा बच्चा है, योग्य है, स्वर्ग स्थापना में ये मेरे कार्य में साथी होंगे, तो वो ये इतना नहीं पहचानते हैं कि इस आत्मा में क्या है क्या नहीं है? तो मेरा संबंध बाबा के साथ वो प्यार वाला, वो विश्वास वाला ऐसा हो, बस वो सब कुछ वो है ही है, बस मुझे बाबा के साथ क्या बात करना है, किस तरह का संबंध रखना, कितनी रॉयल्टी होनी चाहिए, ये है योग का मजा। ऐसे नहीं बाबा बाबा बाबा, नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे समस्याओं का समाधान है योग। हम क्या समझते हैं, शुरुआत में जब 14 साल की भट्टी हुई, वहां 450 एक साथ रहते थे, उस समय समस्याएं नहीं होती थी, नहीं हुई होंगी, उस समय संस्कारों का टकराव नहीं हुआ होगा, अलग अलग स्थान के, अलग अलग संस्कार के, अलग अलग बैकग्राउंड के भाई बहने थे, कोई बड़े घर के, कोई साधारण, कोई वैसे, संस्कारों का टकराव नहीं हुआ होगा, और बातों की बात नहीं हुई होगी। तो उस समय समस्याएं क्यों नहीं, और वैसे तो बहुत ज्यादा समस्याएं तो उस समय थी ना, बाहर से भी अंदर से भी, क्योंकि संस्था ही नया नया था। तो अब जब सब कुछ सेट है, सारा विश्व जानता है, तो अब हमारे जीवन में समस्याएं वास्तव में इतनी नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। मेरे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सबसे बड़ा विघ्न, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कौन 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 सुनाई नहीं दिया? देह अभिमान। किसके देह? देह किसके? देह मेरे देह, किसी और के देह? हाँ, तो कौन कौन प्रॉब्लम का प्रॉब्लम कौन, बीज कौन? इसलिए कहा गया है, हे अर्जुन, तुम्हारा ना कोई मित्र है ना कोई शत्रु, तुम खुद अपने मित्र हो तो तुम खुद अपने शत्रु हो। मेरे ही संस्कार, मेरे ही अभिमान, मेरी इच्छाएं, मेरा हट, जिद, यही मेरे आध्यात्मिक जीवन जो स्वयं भगवान बना करके मार्ग दिया हुआ है, उस मार्ग पर मैं चल नहीं पाती, क्योंकि उसमें मैं स्वयं बहुत बड़ी प्रॉब्लम। इसलिए कई बार बाबा ने मुरलियों में कहा है, अगर ये मैं हट जाए तो प्रॉब्लम नहीं रही। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मैं ही नहीं रहा तो प्रॉब्लम भी नहीं रहा। ठीक है, ये ग्लास है, ठीक है, यहाँ एक छोटी कटोरी रखी है, ये कटोरी है, ये ग्लास है, ये मैं हूं, वो बाबा है, वो बड़ा ग्लास है, वो बाबा है, इसमें भी पानी है, उसमें भी पानी है, इसमें वाला पानी उसमें डाल दूं तो ये मैं वाला पानी उसमें ढूंढे, ये मंजू वाला पानी, ये शिव बाबा वाला पानी, ठीक है ना, ये मंजू वाला पानी उस शिव बाबा वाले पानी में डाल दे, इसके बाद मंजू वाला पानी ढूंढे मिलेगा? क्या हो गया? हमारे योग की जो स्थिति है वो समाई हुई, डूबा हुआ स्थिति नहीं है। हम ऊपर 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 जो है, हम बाबा बाबा कर लेते हैं, मधुबन आ जाते हैं, सेंटर चले जाते हैं, बहने बड़े प्यार करते हैं, टोली देते हैं, अच्छा अच्छा सब अच्छा, एक चेंज मिल जाता है, हम घर चले जाते हैं। हम आध्यात्मिक जीवन में कितना खरे उतरे हैं वो तब पता चलता है जब हमारे सामने कोई बात आए। बात ही ना आए, सब अच्छा अच्छा ही है, तो फिर तो परिस्थिति आना स्वाभाविक है, आना भी चाहिए, पर उस परिस्थिति को हम कैसा उत्तर देते हैं, हम कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं, वो है ज्ञान, वो है योग। जवाब हजारों हों पर उन सारे तमाम सवालों का जवाब क्या है, वो है योग। सवाल इन्होंने किया, इन्होंने किया, इनसे आए, इनसे आए, सैकड़ों तरफ से प्रश्न आए, सवाल आए, पर मेरा जवाब उन तमाम सवालों के लिए क्या है, उससे पता चलता है मैं मेरी योग की स्थिति, मैं योगी हूं, मैं ज्ञानी हूं। अरे आप में से कौन है जो छोटी छोटी बातों में मन बड़ा उदास हो जाता है, मन विचलित हो जाता है? मान लीजिए आप, आपके बहुत अच्छे फ्रेंड है, हैं जी, आपने देखा कई बहुत समय के बाद आपने देखा, मधुबन में देखा, आपने बोला केम छो भाई केम छो, उसने मजा मा बोला ही नहीं, तो आपको लगता है ये क्यों नहीं कुछ बोला, अरे वो तो मेरे को देखा भी, मैंने केम छो भी बोला, उसने कुछ भी नहीं बोला, तो आपका मन शांत होता है? हाँ होता है कि नहीं होता? क्या होता है? अरे तभी तो शुरू होता है, क्यों नहीं बोला, हमने केम छो बोला, उसने सारू कुछ भी नहीं बोला, सारू छू जोई छू छा कुछ भी नहीं किया उसने तो शुरू मन शुरू हो जाता है, क्या हुआ होगा, इसलिए हुआ होगा, इसने ऐसा कहा होगा, उसने उसके साथ बैठा था, उसने तो कुछ उसको बोला तो नहीं होगा, मेरे बारे में उसने कुछ बता तो नहीं दिया हो। अरे बाप रे, हजार सोच, नहीं बोला नहीं बोला, मेरा मन शांत क्यों नहीं रहता? क्यों? कि हमें ज्ञान पता है, पर इस ज्ञान का जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो ज्ञान चलता है पटरी पर। कोई भी जैसे ट्रेन होती है ना, वो ऐसे नहीं चलते, उसके लिए एक एक पटरी चाहिए, एक एक रूट चाहिए, यू नो, पटरी जिसको कहते हैं। तो ज्ञान में पक्के पक्के बगैर गिरे चलने के लिए पटरी की आवश्यकता है, और वो है ड्रामा। और ड्रामा को यथार्थ रीति से जानकर अगर परिस्थिति जब आती है, उस समय हम याद कर लिया, पास, बड़ा पार, कोई बात नहीं। डिटैच्ड ऑब्जर्वर, जिसको बाबा कहते हैं साक्षीपन। आपने केम छो बोला, उसने मजा मा बोला नहीं बोला, मुंह फेर के चला गया, या ठीक, हम उससे डिटैच हो गया, हमको एक ही बात का ध्यान रखना चाहिए, मेरा मन, मेरा वचन, मेरा कर्म कैसा होना चाहिए, बस बात खत्म। आपका मन, आपके वचन, आपके कर्म कैसे होंगे, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं, वो आपका कर्म है, आपकी कहानी है। हमारा सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, हम दूसरों के कर्म कहानी में बहुत रुचि रखते हैं, हमारा तो हवा में छोड़ दिया, पर हम दूसरों के कर्म कहानी में ये क्यों करता है, ये क्यों ऐसी करती है, इसको ऐसा नहीं होनी चाहिए, अरे मैंने ऐसे किया तो इसने ऐसे क्यों किया, क्यों किया का मतलब क्या है, वो अपना पार्ट कर रही है, मुझे अपना पार्ट करना है। ऐसा कोई शास्त्र नहीं है संसार में जिसमें ये प्रश्न किसी ने उठाया हो, भाई रावण ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसका पार्ट था। अगर रावण जोर जोर से चिल्लाता नहीं, हंसता नहीं, सीता देवी को उठा के नहीं जाता, वो डायरेक्टर उसको पैसे ही नहीं देता, उसको इसके लिए तो पैसे मिल रहा है, वो धीरे धीरे धीमे धीमे प्यार से चिल्लाएगा, कहता भाई चिल्ला जोर से चिल्ला, है ना, पैसे उसको ही मिल। तो जिसका जैसा कैरेक्टर है, जिसका जो पात्र है, वो धर्म अपना निभा रहे हैं और मुझे केवल अपना धर्म निभाना है। मेरा मनसा क्या हो, अपने प्रति क्या हो और उनके प्रति क्या हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब हम अपने पात्र पर ध्यान ना रखकर औरों के पात्र के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, तो सबसे बड़ी माया जिसको देहाभिमान कहते हैं, उसका बीज है कंपैरिजन आ जाता है। आपको देखूंगी, आपके बारे में सोचूंगी, तभी तो मैं कंपेयर करूंगी, ये ऐसी है मैं ऐसी हूं, इनके पास ये है मेरे पास ये है, ये ऐसी करती है मैं ऐसी करती हूं। मुझे याद आता है कि हृदय पुष्पा दादी के बारे में सुना है आप, किस किस ने देखा तो होगा, पिक्चर में देखा होगा। चंद्रमणि दादी के वो बड़ी बहन थी, वो पूरे साउथ को संभालती थी। हम साउथ से हैं तो उनके पालना में हम पले बड़े हुए, हमको क्या पता आगे चल करके उनकी बहन चंद्रमणि दादी के भी पालना में पलेंगे, है ना। एनीवे, वो ट्रांस मैसेंजर थी, उनकी आंखों में वो शक्ति थी, आप दृष्टि लो तो आप उड़ी जाओ। तो वो जब हम छोटे छोटे थे तो रात को भोजन के बाद वो अपने खटिया पर ऐसे लेट जाते थे, सब कुमारियां उनके इर्द गिर्द बैठ जाते थे, वो रात 11-11, 12-12 बजे तक कहानियां सुनाती थी। और फिर वो बड़ी बहनें आकर के बोलते थे दादी सवेरे उठना है, आप छोड़ो आप सो जाओ, तो फिर वो छोड़ती थी। एक बहुत अच्छी बात कही, मुझे आज भी याद है, कई कहानियां दादी ने कही थी पर ये मम्मा बाबा के संबंधित कहानी थी। मम्मा उस समय नई नई ज्ञान में चली थी, कुछ ही दिन हुआ था मम्मा को ज्ञान में, अभी कोर्स ही ले रही थी बाबा से ना, मना ज्ञान ले ही रही थी। पर ये दादियां सब पुरानी थी, मना 4-5 साल कुछ साल हो गए थे ज्ञान में चल के, मम्मा से ज्ञान में बड़े ही थे। तो ये मम्मा तो जैसे हम सब ने कहानियों में सुना है गंभीर थी और सुंदर बहुत थी, और मम्मा का जो चाल था ना वो देखने लायक, दादी कहते थे वो देखने लायक होता था, लंबे ऐसे बाल होते थे, वो फ्रॉक 11-12 साल की थी, बच्ची थी मम्मा। फिर राधे आती थी तो जब जैसी मम्मा एंटर होती थी, सारी दादियां लाइन में खड़े होके सिर्फ मम्मा का दीदार करने, देखने के लिए सब लाइन में खड़े हो जाते थे। और जैसे ही मम्मा का क्लास पूरा हो और वापस जाते थे तो ये लोग इंतजार करते थे जब मम्मा उतरे हम फिर देखें मम्मा को। तो एक बार क्या हुआ कि सिंधी जो कम्युनिटी होती है ना, थोड़ा फैशनेबल होते हैं, जैसे ड्रेस पहनते उसी रंग के शू पहनते, उसी रंग के पर्स लेते, उसी ये सारा उस जमाने में थोड़ा फैशनेबल सिंधी के कल्चर होता था, अलग अलग हर रोज शाम को अलग सवेरे अलग इस तरह से। तो उन्होंने देखा मम्मा 3 दिन तक एक ही रंग का फ्रॉक पहन के आ रही है, एक ही रंग की शू पहन के आ रही है। तो उनका ये क्या हो गया, ये बहन मना एक ही रंग की वो ड्रेस पहन के आ रही है। तो इन लोगों को लगा, दादियों को मना, वो भी तो छोटे थे ना उस समय, हम पूछे इनसे क्योंकि उनके आपने चरित्र स्टोरी में पढ़ा होगा कहानी में कि उनके जो पिताजी का जो है थोड़ा बिजनेस थोड़ा लॉस हो गया था और वो सब हुआ था। तो उनको लगा कि ये बच्चे से पूछे तो सही, क्या कुछ चाहिए, क्या है, क्यों ये एक ही रंग की पहन के जा रही है, पर पूछे कौन, क्योंकि वो तो मुस्कुराती नहीं थी। एक तो गंभीर मुस्कुरा, वैसे मुस्कुराहट होती थी पर कोई अप्रोचेबल नहीं थी, कोई ऐसी आकर के बात कर ले और वो कर ले, ऐसी नहीं थी। तो फिर सब दादियों ने मिलकर के ये सोचा, हम सब मिलके पूछेंगे। तो ठीक है, मम्मा का क्लास पूरा हुआ, मम्मा चलने शुरू हुए, सब दादियां बहनें इकट्ठे होके मम्मा को बोला, आपसे हम बात करेंगे, बात करना चाहते हैं। मम्मा ने कहा, बोलो क्या बात है। उन्होंने कहा, आप 3 दिन से एक ही रंग के फ्रॉक पहन के आ रहे हो, एक ही रंग के शू पहन के आ रहे हो, क्या बात हो गई। तो मम्मा और गंभीर हो गई, हाथ में गिनाया, काउंट कराया। मम्मा ने कहा, आप लोगों को पता है कितना पाप करते हो आप, पाप किया आप लोगों ने। उनको ना पाप, क्या पाप, इतना ही तो पूछा भाई, आपने यही रंग का क्यों पहन के आए हो। अभी किसी का कुर्ता फट गया हो, पूछेंगे ना भाई क्यों क्यों फट गया, इसमें पाप की क्या बात है। मम्मा तब कोर्स ही ले रही थी, ये लोग तो पुराने थे। नंबर 1, सबसे पहले आप अपने बॉडी कॉन्शियस में, अपने शरीर के भान में आए, ये सबसे बड़ा पाप। दूसरी बात, आप दूसरों के शरीर को देखा, बहुत बड़ा पाप। दूसरों के शरीर के ऊपर के वस्त्र को, चीजों को देखा, कितना स्थूलता में आए, बहुत बड़ा पाप। स्वयं भगवान यहां पर आकर के हमें पढ़ा रहे हैं, आप शरीरों को देख रहे हो, शरीरों के ऊपर के चीजों को देख रहे हो, इसलिए हम आए हैं। चौथी बात, आपने 3 दिन तक ये बात सोचा, बहुत बड़ा पाप। पांचवा, आपस में मिलकर के इसके बारे में बातें की, इसका वातावरण फैला, बहुत बड़ा पाप। पांच पांच पाप करके आप लोग मेरे सामने खड़े हैं। सारी बहनें भाग गए। The depth of spirituality, आध्यात्मिकता की गहराई, जितना गहराई में जाएंगे हमें प्रॉब्लम दिखाई नहीं देगा। कौन कौन समुद्र किनारे बीच में गए हैं, सी बीच में, किस किस को मजा आता है बीच में तैरना, पानी कर। अच्छा, लगभग सी बीच तो सबने देखा होगा ना, ये सिर्फ मेरा ऑब्जर्वेशन है। कुछ लोग हैं जो समुद्र किनारे में आते हैं, समुद्र वहां है, ये लोग यहां बैठ करके आराम से चटाई या चेयर अपना लेके आते हैं, फोल्डेबल चेयर वगैरह जो है, ये चटाई आराम से बिछा के थोड़ा सा जहां पर शेड हो, और अपने चने बुगरे टोली आइसक्रीम जो भी है वो सब लेकर के आराम से यहाँ बैठ के मजा ले रहे होते हैं, अपना खा रहे होते हैं और लोगों को देख देख के आनंदित हो रहे होते हैं, है ना। कुछ लोग है जो बीच के पानी तक जाते हैं और सिर्फ थोड़ा सा ऐसा ऊपर करके पैर गीला करते हैं, पैर गिरा करके आ जाते हैं। कुछ लोग है पूरा उसमें पानी में जाकर के स्विम करते हैं, स्विम समझते हैं ना, तैरते हैं। और तैरने वाले को भी बाहर के लोग दिखा, क्योंकि सिर ऊपर रहता है, बाकी तो वो लोग शरीर पानी में है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, आप भी आ जाओ, बातें भी कर रहे होते हैं, तैर भी रहे होते हैं। लेकिन चौथे प्रकार के हैं जो अंडर वाटर स्विम करते हैं, पानी के भीतर जाकर के वो लोग 10-15-20 मिनट, कोई आधा घंटा, उनको ऊपर कौन आ रहा है कौन जा रहा है कौन आया, वो अपना आनंद से ठंडे में स्विम कर रहे होते हैं। ज्ञान में भी ये 4 प्रकार के हैं, हाँ जी, ज्ञान सागर है वो, प्रेम का समुन्दर है, शांति का सागर है, सारे विश्व में शांति स्थापन करने वाला हम बच्चों द्वारा, इतना समुन्दर हमारे सामने है, और केवल थोड़े हम बच्चे हैं इस परमात्म समुन्दर के किनारे पर बैठ के आनंद लेना है, ये समुन्दर में डूबना है, ये सिर्फ पैर गीला करना है, ये ऊपर ऊपर तैरना है, ये हमारी बात है, हमारी इच्छा की बात है। जो डूब जाए जिसको कहे समा जाना, समर्पण हो जाना, उनको कोई लेना देना नहीं। आप क्या कर रहे हो, आप समस्याएं क्रिएट कर रहे हो, आप हमें क्या बोल रहे हो, आप हमारे लिए क्या सोच रहे हो, आप हमारे लिए क्या समझते हो, हमें कोई लेना देना नहीं। मन आपका, सोच आप रहे हो, बुद्धि आपकी, आपकी समझ, आप मेरे लिए क्या समझते हो, मुझे क्या फर्क पड़ना, जैसी बुद्धि वैसी समझ। मैं अपने लिए क्या समझती हूं, मैं अपने आप को किस नजर से देखती हूं, ये इंपॉर्टेंट है। आप मुझे किस नजर से देखते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं। पता है हम लोग क्या सोचते वो भी हम ही सोच लेते हैं, तो लोगों का भी सोच हम सोचते हैं तो बाबा को कब याद करें। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ी प्रॉब्लम संसार में, अपने प्रति रिस्पेक्ट, अपने प्रति विश्वास, अपने स्वमान की कमी के कारण होती है। जब मुझे अपने प्रति प्यार नहीं है, अपने प्रति इज्जत नहीं है, हम दूसरों से इज्जत की अपेक्षा करते हैं कि आप मुझे दीदी बोले, आप मुझे बड़ा समझें, आप मुझे मान दें, तो फिर भिखारी हो गया ना। अगर आप नहीं देंगे तो मेरे मन में कहीं ना कहीं आपके प्रति दूरियां बन जाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं योग का जो नींव है वह है सेल्फ रिस्पेक्ट। मैं कौन हूं, मैं किसकी हूं, मैं कौन हूं, मेरे में क्या है, मेरे में क्या है, मेरे अंदर की जो चीजें हैं उसको निकालना, उभारना है, यही तो है योग। हम समस्याओं के बारे में सोचते रहेंगे, ये नेवर एंडिंग स्टोरी है, कभी खत्म ही नहीं होनी है, वो अपनी जगह, पर समाधान क्या है, अपनी स्थिति। अपनी स्थिति अर्थात बाबा के प्यार में ऐसा समझ जाए कि हमको दुनिया दिखाई न दे, मेरे आंखों में, मेरे दिल में, मेरे दिमाग में सारे बाबा ही बाबा समाया हुआ हो। आप मुझे इंसल्ट करते हैं, आप मुझे मान नहीं देते हैं, आप हर बात में आप अड़चन क्रिएट करते हैं, तो आप मेरे लिए एक प्रश्न है, तो मेरा समाधान क्या है, मेरा समाधान क्या है, शुभ भावना। आप क्या कर रहे हो वो आपके कर्मों का हिसाब किताब, आप मेरे प्रति क्या कर रहे हो वो आप अपना कर्म बना रहे हो, मैं आपके प्रति क्या सोचती हूं, क्या बोलती हूं, क्या करती हूं, ये मैं अपना कर्म बना रही हूं। तो क्या मुझे अपने कर्मों पर ध्यान देना आवश्यक है या दूसरों के वचन और बोल पर कर्म पर ध्यान देना आवश्यक है? तो हम क्यों दूसरों को देखें? बाबा ने हर मुरली में यही कहते हैं, दूसरों को मत देखो, दूसरों को मत देखो। सी फादर, सी फादर, ये की है। और अगर मेरा मन कमजोर है, वो छोटी बात भी मुझे बहुत बड़ा लगता है, वहां का सारा असर, हर व्यक्ति का असर, प्रभाव मुझे आत्मा पर पड़ेंगे, प्रकृति का असर पड़ेगा, लोगों के व्यवहार का असर पड़ेगा, क्योंकि मेरा मन की स्थिति कमजोर है। अगर मेरा मन शक्तिशाली है तो किसी का असर नहीं पड़ेगा। जैसे ना इम्यूनिटी, शरीर का प्रतिरोधक शक्ति स्ट्रांग है, आप छींकते हैं, खांसते हैं, आपको बुखार है, इसका असर नहीं पड़ेगा। मेरा शरीर कमजोर है तो आप छींकते हैं तो मुझे भी छींक आ जाएंगे, आप खांसेंगे मुझे भी खांसी आ जाएगी, आपको बुखार है आपके साथ 5 मिनट बैठेंगे मुझे भी बुखार आ जाएगा। तो हम किस किस को बोले भाई आप छींको नहीं, खांसो नहीं, सारी दुनिया तो छींक खांस रही है। तो अब आपको 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 मैं बोलने जाऊं, किस किस के मुंह के ताले लगाऊं मैं, तो बेहतर यही होगा हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। जैसे कोरोना में सब अपने शरीर की प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत सारे उपाय सोचे थे, ऐसे सोल इम्यूनिटी, आत्मा की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए क्या भी हो, परिस्थिति क्या भी हो, लोग कैसा भी व्यवहार करे, मुझे इसका असर नहीं पड़ना चाहिए। देखो तीन स्टेट्स है, थ्री स्टेजेस है, तीन स्थितियां हैं। एक वो है आपका मन वचन कर्म का असर मुझ पर पड़ता जाए, बाहर की परिस्थितियों का असर मुझे पड़ता जाए, माना उसके नीचे में दबी हुई हूं, उधर गर्म तो इधर गर्म, उधर ठंड तो इधर ठंड। और एक वो है कि आपका जो भी व्यवहार है, जो भी है, इसका असर मुझ पर ना पड़े। तीसरी स्थिति है मैं इतनी शक्तिशाली बन जाऊं मेरा असर आपके ऊपर पड़े। तो मेरा कौन सा होना चाहिए, पहला, दूसरा या तीसरा? तीसरा तक हम पहुंचे, कम से कम दूसरा स्टेज तक तो पहुंच ही जाना चाहिए। अपने आप को ऐसे सुरक्षा का कवच हम पहन ले, बाबा के प्यार के, बाबा के विश्वास के, पवित्रता के, है ना, कि आप कुछ भी क्या भी बाहर हो रहा हो इसका असर मुझ पर कम से कम ना पड़े। और हमें इतना शक्तिशाली बनना है कि मुझ आत्मा के पॉजिटिव असर दूसरों पर पड़े, मैं परिस्थिति बना सकूं, परिस्थिति से मैं भाग रही हूं पर मैं इतनी शक्तिशाली वास्तव में हूं जो मैं परिस्थिति बना सकूं। और वैसे भी हम क्यों घबरा रहे हैं परिस्थितियों से, कौन कौन घबराते हैं परिस्थिति से? घबराना, रोना, उससे भाग जाने की कोशिश करना, कौन कौन कर, अभी क्या हाथ उठाना है ना, हाथ क्या उठाए, वो तो थोड़ा थोड़ा वाइब्रेशंस तो आ ही रहे हैं जी, ये हर घर की कहानी है भैया, घर कर कर रामायण क्या बोले हैं जी। एनीवे हमारे उपनिषदों में, आई थिंक उपनिषदों में बहुत अच्छा ये वर्णन है, हर आत्मा, ध्यान से सुनेंगे, हर आत्मा अपनी जीवन यात्रा वो स्वयं बनाती है। यह शरीर छोड़कर जब हम दूसरा शरीर लेने के बीच में जो समय होता है, उस समय में अगला हमारा क्या होना चाहिए वो हम स्वयं निर्धारित करते हैं। आप हम में से कौन कौन है जो कभी हमसे गलती हो जाती है बार बार, तो हम अपने आप में ये बोलते इतना मैं गलती कर रही हूं, पता नहीं मुझे क्या सजा मिलने वाला, कौन कौन ऐसा सोचा है? जरूर मुझे बहुत बड़ी सजा मुझे भुगतना पड़ेगा, मैंने इतनी गलती कर ली, ऐसा किस किस के मन में आता है? मन में आता है, रियलाइजेशन होता है ना, अभी मैंने गलती की, मेरे को लगता है पता नहीं मैंने इतनी बड़ी गलती की, पता नहीं क्या सजा मुझे, मैं ऐसी सजा मुझे मिलना चाहिए इसके लिए, यही सजा मेरे लिए ठीक होगा, कई बार आता है ना ऐसा। जब आत्मा शरीर छोड़ के दूसरा शरीर लेने के पहले जो वतन में बहुत मन शांत हो जाता है, इस जन्म उस जन्म सारे जन्मों के झंझट से आत्मा फ्री हो जाती है, और बाबा के इतना असीम प्यार का अनुभव आत्मा करती है, उस प्यार में वो बिल्कुल न्यारा होकर अपने कर्मों को देखती है, मैंने किसको दुख दिया, किसको सुख दिया, किसको धोखा दिया, किसको ये किया, वो सारा देख करके वो स्वयं निर्धारित करती है इस कर्म का ये, इस कर्म का ये, तो मैं आपको धोखा दिया, मैं आप ही के घर में जन्म लूंगी, और मतलब लड़का बन के लड़की बन के, और आपका आपका मदद करूंगी, और आप जो भी सजा दे मैं भुगतूंगी, तो हम खुद उसको सुख का दुख का अच्छे का बुरे का लड़के बनना स्त्री बनना ये सारा आत्मा स्वयं की यात्रा निर्णय करती है। इसलिए बाबा कहते हैं ये बनी बनाई बन रही ड्रामा, ये बनी बनाई फिर हमें उसको ही बनाना है, उसको ही फिर रिपीट करना है। बना हुआ है ये, बनाई हुई है। तो जब मैंने खुद अपने जीवन की ये सारा खेल रचा है, मैंने स्वयं अपना जीवन की पूरी स्टोरी बनाई है, कहानी बनाई है, और मैं उस पात्र अपना कहानी खुद का बनाया हुआ कहानी का खुद हम पात्र अदा कर रहे हैं, घबरा क्यों रहे हैं? जबकि बाबा ने न केवल ड्रामा बल्कि कर्मों के भी गुह्य गहन गति हमें बाबा ने समझाई है। इसमें परिस्थितियों से भागने की तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। और कहां तक भागेंगे? जितना भी हम भाग ले, दौड़ा दौड़ा करके कर्म हमारे पीछे पीछा करेगा, कहां तक भागेंगे? इसलिए एक बार फेस करो, खत्म हो जाएंगे। किसके किस किस के पीछे कुत्ते पड़ा है, कुत्ता पड़ा है? नो आई एम सीरियस, सीरियसली, किस किस के पीछे कुत्ता पड़ा है? कुत्ते से कौन कौन भागा है? अगर कुत्ता आपका पीछा पड़े भाई, इसको डिलीट कर देना हा? और आप भागो डर के मारे, वो कुत्ता भगाएगा। एक बार पलट करके उसको सामना आंखों में आंखें डाल करके देखो, कुत्ता भाग जाएगा। परिस्थिति भी इतनी है, वो तो फिर भी कुत्ता है तो परिस्थिति है, वो उसमें तो दम भी नहीं है, ये तो जानवर है, मना जान है इसमें, परिस्थिति में कहां जाने भैया? एक सॉरी बोल दो, खत्म समस्या। एक प्यार से मुस्कुरा दो, समस्या खत्म। पर हम है कि नहीं भाई, आपने शुरू किया, आप मांगो सॉरी, हम क्यों करें? तो फिर हम उसको उलझा के उलझा के उलझा के उलझा के कई जन्मों की उलझन बना देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अरे सारी बातें कल की छोड़ो, कितना उठा उठा के चलेंगे, कल भी जो बातें हो गई भूल जाओ, आज की बात कल रिपीट भी ना करो। छोटी सी बात क्या हो जाती है, हम पूरे उनके भागवत उठा करके सामने रखते हैं, तुमने उस दिन भी ये किया था, 4 साल पहले भी यही किया था, अरे अब 10 साल पहले ये जो हुआ वो भी तो आपने ही, तो सारा उनका जो है उठा करके सामने रख देते हैं। वो व्यक्ति इंसल्ट महसूस करता है। कभी भी किसी को ऐसी शिक्षा ना दे, ऐसा बोल ना बोले जो उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे, वो बहुत बड़ा समस्या। मैं आपको आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाऊंगी, कल कोई ऐसा उत्पन्न होगा जो मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को, मेरा सम्मान को, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाएगा। इसलिए बाबा हर रोज हर रोज हर रोज बच्चों को याद दिलाते हैं, बच्चे मनसा वाचा कर्मणा कोई ऐसा कर्म ना करे जिसे किसी को भी लेश मात्र दुख मिले। अर्थात मनसा वाचा कर्मणा ऐसा कर्म करे जो सबको सुख मिले, दुआएं मिले, हिम्मत मिले। ये सारे हमारे पीछे का किया हुआ ठीक हो जाएगा। बाकी परिस्थितियों के लिए तो बाबा ने बहुत सारी बातें कही हुई हैं, हाँ जी। तूफान क्या है? तूफान क्या है? हाँ, है ना? कोई भी बीज अगर हम जमीन में डालते हैं, अगर वो बीज घबरा जाए, भाई नीचे तो अंधेरा है, बहुत गर्मी है, मुझे निकालो मुझे निकालो, वो अंकुरित नहीं होगा। उस बीज को उस अंधेरे में उस गर्मी में तपना पड़े कई दिन तक, तब जाकर के उस बीज से अंकुरित पैदा होगा। अगर तपते हुए आग में सोने को न डाले तो सोना शुद्ध होगा ही नहीं। अगर पत्थर को बार बार हथौड़ी से मार मार करके उसको शेप ना दे, रूप ना दे, तो पत्थर भगवान नहीं बन सकता। ठोकर खाके ही कोई ठाकुर बनता है ना। तो इसलिए कोई भी बात आए हमें दिल से धन्यवाद करना चाहिए, मैं मजबूत बन रही हूं, क्योंकि परिस्थितियां हमारे भीतर की जो अच्छाइयां हैं वो बाहर निकालने का बहुत सुंदर मौका है। इसलिए आज के बाद हम अपने आप से, मैं प्रतिज्ञा शब्द यूज नहीं करती हूं, हम सब अपने आप के लिए गिफ्ट देंगे। कौन कौन देगा? अपने लिए एक बहुत सुंदर उपहार देंगे। कौन उपहार देगा? वेरी गुड। क्या उपहार है? हम अपने आप के लिए आज से एक गिफ्ट देंगे, और वो गिफ्ट ये है, आज के बाद कोई भी बात हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कोई कैसा भी व्यवहार करे, मैं अपने मन को खुश रखूंगी और दूसरी बात मुस्कुराती रहूंगी। दो बातें कौन कौन करेगा? क्या करेंगे? क्या करेंगे? कोई भी परिस्थिति आएंगे, अपने मन को और चेहरे पर। वेरी गुड। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच।